किसी ने बहुत पेन चलाया इस किताब पे, नहीं हो तो हम लोग ने कल चर्चा कर रहे थे श्लोक क्रमांक 3 में, उत्साह भक्ति का जान है। अगर उत्साह नहीं है तो भक्ति में प्रगति नहीं होगी, और अगर धैर्य नहीं है तो शरणागति नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्साह से तो भक्ति कर रहा हूं लेकिन दो दिन किया और भगवान दर्शन नहीं देंगे तो मैं फिर अब भक्ति करना छोड़ दूंगा, तो ये कोई शरणागति का लक्षण नहीं है। तो उत्साह के संग, दृढ़ता के संग और निश्चय के संबंध में हमने उदाहरण दिया था, वो जो चिड़िया का जिसके अंडे समुद्र चुरा ले गया था, जब निश्चय पूर्वक व्यक्ति भजन करता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पेज क्रमांक हिंदी की पुस्तक में 35 से। हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा करा था इसमें कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रमाणिक व्यक्तियों के पास जाना चाहिए, उसे 3 उपहार देने चाहिए। कौन से 3 उपहार थे? प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। और फिर उसके बदले में वो क्या देंगे आपको? उपदेशन्ति ते ज्ञानेनम ज्ञानम ज्ञानेन सत्तर्षिणः। तत्वदर्शी होते हैं वो लोग, समझते हैं। मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है, तद्विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, आवश्यक है। एक बात इंपॉर्टेंट है, तद विज्ञानार्थम, भगवान के विज्ञान के अर्थ के लिए। तद मतलब भगवान, तो भगवान के लिए ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। तद से हमेशा भगवान को इंगित किया जाता है। भगवान गीता में भी बोलते हैं ओम तत् सत इति, ऐसे उदाहरता करके ओम तत्सत इति ऐसे करके श्लोक बोलते हैं। तत् मतलब भगवान। तो भगवान के संबंध में विज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए गुरु के पास जाना ही है और उसके लिए ही गुरु के पास जाना है। दो शब्द हैं, दो वाक्य हैं। विज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना ही चाहिए मानव जीवन में, और उसके लिए ही गुरु के पास जाना चाहिए। भौतिक प्रॉब्लम को लेकर के गुरु के पास वस्तुतः नहीं जाना चाहिए। गुरु मतलब आध्यात्मिक गुरु, ये नहीं कि मुझे बुखार हो गया तो मैं पूछूं गुरु जी के पास, मेरा टांग में दर्द हो गया है या मेरा बच्चे का। एक बार हम लोग क्लास दे रहे थे, उसका एक बच्चा बोल, एक माता जी आए, बोली मेरी लड़की पहले फर्स्ट आती थी अब थर्ड आती है। और पूरी चर्चा हम कर रहे थे गोलोक वृंदावन के बारे में तो यही अब इसमें हमें फंसा रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो इस तरह की जिज्ञासा करने से कोई फायदा नहीं कि लड़की फर्स्ट आती थी अब थर्ड आती है। तो ये मेन बात है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। और क्या है? श्रोत्रियम समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे चाहता हूं, समझ में आ रहा है इसका, ये मतलब लकड़ी लेके जाओ, लकड़ी से यज्ञ होगा, अर्थात सेवा की भावना। कि नहीं कि वहां पर गुरु जी मेरी जिज्ञासा है, जिज्ञासा तो है लेकिन सेवा की भावना भी होनी चाहिए। इसमें बता रहे हैं डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रेडमी, ओके अभी चल रहा है, ठीक है, ओके। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में बहुत सुंदर बात है, जब भी दिव्य गुह्य ज्ञान की बात आए, तद रहस्यम च अंगम च, चतुश्लोक की भागवत में भी आता है, तो उसका अर्थ है, रहस्यम का अर्थ है शुद्ध भक्ति। जब भी आप देखेंगे राज विद्या राज गुह्यम, वहां पे भी गुह्य का अर्थ है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का पथ राजगुह्य है क्योंकि उसके द्वारा भगवान का साक्षात्कार होता है। तो ये सब गुरु सिखाते हैं, गुरु बताते हैं, उनका कर्तव्य बताना, लेकिन तब बताएंगे जब 3 उपहार मिलेंगे। और ये 3 उपहार फीस की तरह नहीं है, हमने फीस दे दी हमें पढ़ाना ही पड़ेगा आपको। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लेजर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु की प्रसन्नता से हम व्यक्ति प्रगति करता है, जैसे सोचता रहेगा बैठा बैठा उससे प्रगति नहीं करेगा। इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं मानसिक चिंतन से आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता का बीज प्राप्त कर सकता है, यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव हो पाता है। एक इस श्लोक को तो विचार खूब करना चाहिए जम करके कि कितने जन्मों से व्यक्ति फंसा है। और जब हम सोचते हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि मतलब खाली ब्रह्मा जी का एक दिन या ब्रह्मा जी का एक जीवन, कब से घूम रहे हैं यहां पे हम लोग पता नहीं तो पता नहीं उत्तर तो ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा विचार कीजिए। ब्रह्मा जी का एक दिन या ब्रह्मा जी का एक जीवन, कब से घूम रहे हैं हम लोग? अनादि काल से। कितने ब्रह्मा जी का जीवन बीत गए और कितना हम रोए हैं, ऐसा बोला जाता है इतना रोए हैं हर जीवन में कि सारे आंसुओं को मिला लेंगे तो सागर हो जाएगा, सारे आंसुओं को मिलाएंगे तो सागर बन जाएगा। तो कहेंगे ये तो बात हजम नहीं हो रही है, अगर हर जन्म में एक ड्रॉप रोए, एक ड्रॉप होता है 1 ml, और उसको मल्टीप्लाई कीजिए अनंत जन्म अनादि जीवन से, तो हो गया ना सागर। और 1 ml एक बूंद से तो अधिक रोए ना हर जीवन में, अनादि ड्रॉप्स। यस, खूब रो लिए जम करके। और अद्भुत बात है कि पिट रहे हैं पिट रहे हैं पिट रहे हैं, लेकिन क्यों, क्या भाग्य है, क्या किया कि भगवान की कृपा से प्रमाणिक गुरु मिल पाए, ये बहुत बड़ा रेयर बात है। इसको स्मरण करते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए, नहीं तो उसके बाद हम फिर नाव में आने के बाद फिर कूदने का संभावना हो सकती है, दो चार लोग अच्छे नहीं लगे तो फिर समुद्र में कूद जाऊं और उसके बाद दोबारा कब मौका मिलेगा, बहुत मुश्किल है समझना है। सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय है, उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदी ग्रह जैसा है। बहुत अच्छा, एक कल रात में इस बात में विचार आया कि बंदी ग्रह में जब कपड़ा खराब हो जाता है तो नया कपड़ा दे दिया जाता है। हाँ हाँ, दिया जाता है, ऐसी बात नहीं, नया कपड़ा दे देते हैं, लेकिन फिर बंदी ग्रह में रहते। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? इस समय हमारे पास ये ड्रेस है, ड्रेस मतलब ये शरीर, जब ये खराब हो जाएगा तो माया फिर दूसरी ड्रेस दे देगी, फिर चेंज कर देंगे तो फिर ड्रेस दे देगी, ड्रेस दे दे रही है लेकिन बंदी ग्रह से निकलने का मौका नहीं देगी। तो बंदी ग्रह की जो दुख है वो व्यक्ति भोगता ही रहेगा। अलग अलग ड्रेस में हम लोग सोच रहे हैं, ये अलग ड्रेस है, वो अलग ड्रेस है, वो अच्छा हो जाएगा, रहेंगे तो बंदी ग्रह में। कभी कभी कोई ज्योतिष किसी को बोल देगा कि आपके जीवन में बहुत पैसा आएगा, तो सोचता है कि अब पैसा आएगा, वाह बहुत अच्छी बात है, अब मैं सारे दुखों से निवृत्त हो जाऊंगा। ये नहीं बोल रहा ज्योतिष, खाली ये बोल रहा है कि पैसा आएगा, ये नहीं बोल रहा है कि आपके जीवन से दुख मिट जाएगा। लोग इसलिए खुश हो जाते हैं कि सोचते हैं कि धन आएगा तो हमारे जीवन से दुख मिट जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये बंदी ग्रह, ये वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदी ग्रह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि ना जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर करने के लिए बाध्य होते हैं। एक एक लाइन शिला प्रभुपाद की बहुत जबरदस्त है, जरा विचार कीजिएगा उस पर। हम कैसे मुक्त होंगे आप क्या जानते हो? अरे इतना सोच रहे हैं कैसे मुक्त होंगे, कृष्ण की सेवा करके। ये नहीं समझ पाने के कारण व्यक्ति क्या सोच रहा है, जिसको ये पता नहीं बात, बात को मालूम चल गया बहुत आसानी बात, लेकिन अदरवाइज नहीं पता तो मुक्त कैसे होंगे, तो सोचेगा कि हो सकता है कि मैं उस ग्रह पर जाकर इन कष्टों से मुक्त हो जाऊंगा, हो सकता है उस ग्रह पर जाकर कष्टों से मुक्त हो जाऊंगा, हो सकता है उस परिस्थिति में जाकर के मैं कष्टों से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन आप ब्रह्म भुवनानो का पुनरावर्ति न वर्जन, ये एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे। ऐसा आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, एक बुढ़िया थी, भगवान उसको दर्शन दिए तो बुढ़िया के हाथ में वो उठाई हुई थी एक लकड़ी, तो उसने क्या वरदान मांगा, ये उठाकर मेरे सर पर रख दीजिए। तो यानी जो आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक कष्ट है वो हमेशा लगे रहेंगे। आप लोग उससे कन्विंस हैं कि इंद्र को भी कष्ट आता है? हाँ, कई कई हजारों सालों के लिए उनका राज्य चला जाता है, और जब स्वर्ग जाएगा तो कितना दुख होता है हम सोच नहीं सकते, बहुत परेशानी होती है। या कोई शाप दिया तो फिर वो क्या बनते हैं, सुअर बन गए, बड़ी वजीयत है इसके लिए, और डर बना रहता है कि कभी असुर आकर के उसको जीतने लगे। बहुत बहुत सारी चीजें कष्ट वाली है। ओके, इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उनसे सुनता है तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। कितना एक एक जबरदस्त है, एक एक लाइन कितनी जबरदस्त है कि देखिए, मान लीजिए इस्कॉन के संपर्क में कोई भक्त आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सुविधा है वो क्या है इस्कॉन में, श्रवण करने की, क्योंकि श्रवण ही हमारी श्रद्धा का आधार है। जब हम श्रवण नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद हरि नाम भी बंद हो जाएगा, क्या नहीं होता? बहुत से भक्त तो करना छोड़ देते हैं, ठीक है वो नरक नहीं जाएंगे लेकिन भगवत धाम भी नहीं जा पाएंगे। तो जो मुख्य बात है, मुख्य तरीका है जिसके द्वारा हमारा ज्ञान नष्ट होगा, श्रद्धा का विकास होगा, उसको हम बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं। आप देखिए, अब हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, कभी किसी ब्रह्मचारी आश्रम की इष्ट गोष्ठी में ये दिक्कत आए कि प्रभु जी हमें कथा सुनने को नहीं मिल रहा है? 40 साल हो चुका है इस्कॉन में, आज तक कभी कहीं वो युद्ध हुआ इस बात पे कि भाई हमें कथा सुनने को नहीं मिल रहा है? कोई तकलीफ ही नहीं महसूस कर रहे, जबकि यहां क्या बोल रहे हैं, धैर्य पूर्वक सुनना। धैर्य मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक ही बार में समझ में भी आ गया इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वीकार करेंगे। जैसे भी आप मास्टर वाला पॉइंट आपने सुबह सुना, आपने सुन लिया, लेकिन पहली बार में आपने स्वीकार नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था मैं कि मैं अपने मन से कुछ बोल रहा हूं या गलत बोला, वो समझ में आने के बाद स्वीकार करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए बार बार चर्चा करने से अच्छा हाँ अभी समझ में आ गया। ज्यादा समझाया नहीं मैंने आपको, लेकिन आप समझ गए इस बात को। अच्छा हाँ, अगर हम भगवान से, सारी विभूतियां भगवान की हैं, अगर हम किसी से द्वेष कर रहे हैं अर्थात भगवान से द्वेष कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि धैर्य पूर्वक बार बार सुनने से फिर बातें समझ में आती और उसके बाद हम उसको मानने लगते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है और मुझे इसको अप्लाई करना है। ये स्टेजेस देख रहे हैं, पहले तो समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, समझ फिर उसका समझ में आने लगता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये चीज ठीक है, और फिर भी हम सोचते हैं मैं अप्लाई नहीं करना चाहता हूं, फिर भी अप्लाई करना शुरू करते हैं, और फिर जब अप्लाई करते हैं उसको, मतलब सकारात्मक रूप से उसको करते हैं, तो उसके बाद उससे और श्रद्धा डेवलप होती है, फिर और व्यक्ति भक्ति करने लगता है। तो मुख्य आधार है श्रवण करना, इसीलिए बोल रहे हैं कि जब वो ध्यान इसका वो चार्जिंग पॉइंट निकाल दीजिए, नहीं तो किर किर की आवाज आती रहेगी, इसको वहां से बंद, फिर वहां से बंद कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण बात सीखी है, श्रवण कीर्तन करे जले, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, यानी कि ये जो श्रवण कीर्तन का प्रोसेस है, इसके द्वारा हमारी भक्ति लता का जो बीज हम ग्रहण करते हैं उसमें जल मिलता है, धीरे धीरे वो लता उगती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इसको नेग्लेक्ट हम करते हैं, कोई भी व्यक्ति करता है, तो फिर लता सूखेगी। जैसे अगर हम लोग एक दिन प्रसाद नहीं खाएंगे तो सूखेंगे ना, अनुभव तो करते हैं, क्यों नहीं सूखते हैं, सूखन महसूस होने लगती है, कथा नहीं सुनेंगे तो लगता है कुछ नहीं, क्या दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को कपिल देव जी बोलते हैं, बहुत लंबे समय तक मेरे बारे में सुनना, श्लोक आया जा रहा संस्कृत का, मेरी कथा श्रवण ही ना करके आता है माता, नहीं ये तो है, वो सारे प्रोसेस में वो बोलते हैं कि बहुत लंबे समय तक मेरे बारे में सुनना बहुत जरूरी है। आप उसमें देखेंगे तो उसमें आपको श्लोक में मिल जाएगा, ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता का ऐसा को ऐसा अवसर प्रदान करता है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के इस सुअवसर को लाभ उठाता है तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, निष्ठावान लोग बहुत कम है, जिनकी भगवत भक्तों में निष्ठा है, भक्ति में निष्ठा है, निष्ठा मतलब श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, कि ये लोग सही बोल रहे हैं। आप बहुत लोगों को प्रचार करेंगे, सब लोग आपकी बात स्वीकार नहीं करेंगे, पहली बात तो लोग सुनने नहीं आएंगे, सुनने के बाद स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप लोगों में से कितने लोगों का अनुभव है, जब आपने भक्तों से पहली बार सुना तो आप लोगों को श्रद्धा होगी, ये सही बोल रहे हैं है ना, और आपके मित्रों को अरे तो फालतू बोल रहे, ऐसा हुआ था, हमने तो देखा 400 लोग थे हमारे उसमें, और 400 में से हम दो ही लोगों को लगा है सही लोग सही बोल रहे हैं, और दूसरा जो मित्र था उसको लगा कि ये भी सही बोल रहे हैं और कुछ लोग और भी सही बोल रहे हैं तो कुछ दिन के बाद उनको समझ में आया कि यही लोग सही बोल रहे हैं, बाकी लोग गलत बोल रहे हैं। तो मुझको एकदम विश्वास हो गया था, नहीं यही सही लोग बोल रहे हैं, यही लोग सही बोल रहे हैं। तो ये निष्ठा का कारण भी है, पहले जन्म की हम सुकृति रहती है तो व्यक्ति को भक्तों का संग मिलता है तो तुरंत उसको विश्वास होता है नहीं लोग सही बोल रहे हैं और मुझे उनके अनुसार करना चाहिए, भले ही वो शास्त्रों को ना जानता हो शुरुआत में। लेकिन ध्यान दीजिए, कनिष्ठ भक्तों को हम सब लोगों को चाहिए कि हम बार बार श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य से सुने, तब हमारी श्रद्धा स्थिर होती, और नहीं तो हम अपने अंदाज से भक्ति करेंगे तो कोमल श्रद्धा के कारण आउट होने का चांस बहुत रहेगा। दूसरा, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्योंकि प्राय समाज में कनिष्ठ लोग ही हैं, कहां श्रद्धा होती है भगवान में शास्त्र में, तो उन लोगों को सुनने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में भगवान की भक्ति का बीज है एक्चुअली, उसको थोड़ा सा जल पानी देंगे तो फिर वो उठने लगता है। तो इसलिए आवश्यक है कि लोगों को शुद्ध कृष्ण कथा मतलब प्रामाणिक रूप से कृष्ण कथा सुनने का मौका दिया जाना चाहिए। इस संबंध में एक उदाहरण मेरे मन में आ रहा है। जैसे हमारे सामने एक JBL का स्पीकर रखा है, अभी बना तो चाइना में है, ऐसे के बहुत सारे स्पीकर बने हैं और ऐसे बहुत सारे स्पीकर अलग अलग जगहों पर रखे गए हैं और अलग अलग जगह पर बोल रहे हैं। वो अलग बात है कि उस पर ये जड़ पदार्थ है, इसलिए ये अपने से नहीं बोल सकता है। लेकिन उसी तरह से हमारा जो इस्कॉन है वह भी एक स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई नॉइज नहीं आना चाहिए, अर्थात मतलब उसमें कुछ गड़बड़ नहीं आनी चाहिए, आवाज में आवाज साफ आनी चाहिए। आवाज साफ आने का अर्थ है उसमें कोई मानसिक कल्पना नहीं होनी चाहिए, परंपरा में जैसा ज्ञान है वैसे प्रस्तुत करना चाहिए और हर व्यक्ति को स्पीकर बनने का प्रयास करना चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और अलग अलग भाषा में बोलना चाहिए ताकि वो खुद शुद्ध हो जाए और वो दूसरों को भी मदद कर सके शुद्ध करने के। आप प्रयास कर सकते हैं, थक गए, बहुत थक गए आप, और रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस सुअवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करे। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, जैसे मान लीजिए हम समुद्र में गिरे हुए हैं और कोई व्यक्ति रस्सी गिराता है, अब आपको कोई उत्साह ही नहीं है, रस्सी आ गई। हाँ, बहुत लोग रस्सी गिराते हैं, आप पहली बार तो ना बचाने आए, बहुत लोग रस्सी गिराते हैं, बहुत देखे ऐसे करके, तो अब बताइए क्या करेगा वो आदमी। हमारा भी तो उत्साह होना चाहिए कि उसको कस के पकड़े और उठा लिया हमको, हम कहे नहीं वाकई रस्सी है क्या, क्या हमको उठाएगी, क्या उसके पास शक्ति है, ऐसा तो नहीं मालूम मैंने रस्सी पकड़ी और बीच लेवल में रहा, अरे ऊपर से छोड़ दे मेरे को, फिर मैं पानी में गिर जाऊं। अरे बहुत सारे, आप मेरी बातें का अर्थ समझ रहे हैं, बहुत सारे हम डाउट कर सकते हैं, डाउट से होगा क्या। उत्साह आएगा श्रद्धा से, श्रद्धा आएगी सुनने से, क्योंकि इतना ज्यादा प्रभावशाली है भगवान की भक्ति कि एक बार में तो लोगों को श्रद्धा ही नहीं होती, एक नाम से अनंत जन्मों के पाप कट जाते, समझ में नहीं आता। यमराज तक भी देखिए गलती कर गए, भगवत धर्म इतना सूक्ष्म है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं टीका में कि भगवान की भक्ति इतनी सूक्ष्म है कि भक्तों को समझ में नहीं आता हमारा किस प्रकार से शरीर परिवर्तित हो रहा है, हम नाम जप कर रहे हैं, हम समझ नहीं सकते। जैसे कि इसमें लिखा है पांचवें स्कंद में, सक्रदाद अदीतः, एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो चंडाल का शरीर भी पूरा परिवर्तित हो जाता है, जो शूद्र से भी बाहर की योनि का, इतनी खराब योनि, लेकिन दिखता नहीं इसलिए हम समझ नहीं पाते। इसलिए बार 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 श्रवण करने के द्वारा शास्त्रीय श्रद्धा को अर्जित करेंगे तो उत्साह से भक्ति में लगे रह सकते हैं। यानी हमारा भी कर्तव्य है भक्ति में, केवल गुरु ही खींचेंगे ऐसा नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोग उस रस्सी को पकड़ें। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि क्या आपको मुक्ति का प्राप्त करने की दवा पता है, कहते दवा तो मुझे पता है लेकिन फॉर्मूला थोड़ा कठिन है बनाना, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भगवान का नाम जप करना होगा, नियमों का पालन करना होगा, तो हम मुक्त हो सकते हैं। हम लोग इसको कल भी चर्चा कर रहे थे, भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। एक और महत्वपूर्ण बात विचार करें, उत्साह का कारण है कि व्यक्ति को विश्वास है कि इससे आगे मुझे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा, भले ही इस समय मुझे कुछ नहीं लगे प्राप्त होता हुआ, भविष्य में मेरे लिए बहुत लाभ होगा, ये उत्साह का बहुत बड़ा आधार है। फ्रूटिव तो होना ही पड़ेगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कोई फल नहीं चाहिए, बिना फल के कोई काम करता है, बिना उद्देश्य के काम करता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, अभी नहीं कह रहे कि मैं बिना लक्ष्य के बिना उद्देश्य के भक्ति कर रहा हूं। भक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण, भगवान को प्रसन्न करना। भगवान प्रसन्न होंगे तो हमको भी कितना सुख प्राप्त होगा उससे। ये आप इसको जैव धर्म में पढ़ेंगे, खुद भी सुखी होने की इच्छा ये स्वाभाविक है जीव के लिए, लेकिन कृष्ण से अलग हो रहे कि नहीं, कृष्ण को संतुष्ट करके सुखी होने की भावना होनी चाहिए। भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे तभी भगवान का माधुर्य अनुभव होगा। मैं सेकंड कंठ पढ़ रहा था जब बता रहे थे, प्रेम के द्वारा ही भगवत साक्षात्कार हो सकता है, तो भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं, और साक्षात्कार का मतलब है किस प्रकार से भगवान सत हैं, किस प्रकार से चिद हैं, आनंदमय हैं, और गुणों का हम साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो वो अवस्था के बारे में जब सुनेगा व्यक्ति तभी तो उसको उत्साह रहेगा कि मैं भक्ति करता रहूं। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, ये इच्छा आनी चाहिए, इतना नाम का रस आस्वादन करना चाहिए। कितने आचार्य लोगों ने बोला है, वो भी बोलते हैं हरिदास ठाकुर जी, दश अपराधे ये न हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। मेरे हृदय में दस अपराध जकड़े नहीं, और जहां भी मैं आप मुझे रखिए मैं हरि नाम का आस्वादन कर सकूं। तो ऐसा नहीं कि उसको हम नहीं चाहते, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति हम चाहते हैं, या भगवान के संग सीधा संबंध स्थापित हो पाएगा, क्या ये नहीं चाहते? फिर तो वो अगर गोल रहेगा कि भाई मैं भगवत धाम जाऊंगा, भगवान के संग रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए, तो फिर व्यक्ति उत्साहित रहेगा। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए है? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थम अखिल चेष्टा, कृष्णार्थम अखिल चेष्टा और कर्मयोग में अंतर है। समझते हैं इसका अंतर? कर्मयोग में व्यक्ति कर्म करता है अपने गुण और कर्म के स्वभाव के अनुसार, और उसके फल को भगवान को समर्पित करता है कर्म फल से मुक्त होने के लिए। लेकिन कृष्णार्थम अखिल चेष्टा मतलब केवल कृष्ण की प्रीति के लिए ही कर्म करना, जैसे आप जप कर रहे हैं, तो ये नहीं कि वो कर्म का फल आप भगवान को दे रहे हो, वो कर्म ही कृष्ण को प्रसन्न करता है। आप समझते हो? जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, कथयन्तस्य माम नित्यम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान की कथा भक्त लोग चर्चा करते रहते हैं, तो वो कर्म ही कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ऐसा नहीं कि उस कर्म का जो फल आया है वो आप कृष्ण को समर्पित कर रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, तो वो बिजनेस कृष्ण के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन उसका फल जो आ रहा, धन आ रहा, वो भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं। थोड़ा अंतर है। हाँ, डायरेक्ट जो भक्त है वो कार्य ही कृष्ण के लिए कर रहे हैं सीधे, ये अंतर है। ओके। जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी हैं, अतः कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है, जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवद्गीता में कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्तुतः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है, सारे जीव मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये लाइन आप समझते हो, मैं थोड़ी सी व्याख्या करूंगा कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा पूरे जगत में व्याप्त हैं, जैसे सूर्य पूरे विश्व में व्याप्त है सूर्य की किरणों के द्वारा, और पूरे ब्रह्मांड की ग्रहों का वह नियमन कर रहा है। मेक सेंस, समझ में आ जाता होगा बात। लेकिन सूर्य सीधे संपर्क नहीं कर रहा है किसी वस्तु से, ठीक है? उसी प्रकार भगवत इच्छा से, भगवान की इच्छाओं से उनकी शक्तियां क्रियान्वित होती हैं और पूरा जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय होता रहता है, लेकिन भगवान उसमें सीधे प्रवेश नहीं करते हैं भगवान के रूप में। ओके। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। उदाहरण अर्थ, इस समय हम डिक्टाफोन बोलकर लिखने का यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकतावादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया, उसने इसे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावे साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निसंदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों, भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं अंतः क्रियाओं से बने हुए हैं। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। कृष्ण के कथन मत्स्थानि सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है, यही हमें बता रहे थे आपको। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। एक लाइन हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे इसका रिलेशनशिप क्या है। कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। आप समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में ये बात क्यों लिख रहे हैं, मैं अततम इदम सर्वम। एक शुद्ध भक्त के लिए कोई भी वस्तु प्रेरणा को खत्म करे ऐसा नहीं हो सकता, अनइंस्पायरिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर वस्तु को उपयोग वो भगवान की सेवा में कर सकते हैं। देर इज नथिंग अनइंस्पायरिंग फॉर अ प्योर डिवोटी। इदम ही विश्वम भगवान इवेतरह, सुना है क्या है अपने श्लोक? नारद मुनि बताते हैं ये जगत भगवान से अभिन्न है क्योंकि वो भगवान की शक्तियों से आया। तो अब जब जो हमारे आसपास सब कुछ मैटर है, हमारा शरीर भी जड़ पदार्थ है, लेकिन जड़ पदार्थ को जब हम भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं तो अपने आध्यात्मिक गुण को ग्रहण कर लेता है। जैसे देखने में ये माइक ऐसे ही है हा? लेकिन अगर हम इसको उसके सोर्स से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो उसमें कोई भी कार्य करने की शक्ति नहीं रहेगी। लेकिन अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो जैसे ही उसको उसके पावर सॉकेट से कनेक्ट करता है तो उसे बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। समझ रहे हैं? जड़ ये अभी भी रहेगा लेकिन ये आध्यात्मिक गुणों मतलब क्रिया कह सकते हैं एनर्जाइज हो गया, इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, तरंगायित हो गया है। उसी प्रकार से हमारा शरीर या वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, जिनके बीच में हमको रहना है, जिनका उपयोग हमें करना ही है, उनको हम भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं तो उनका उपयोग करने से हमें पहली बात तो बंधन नहीं लगता इस जगत में और हम भक्ति में भी प्रगति करते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरा शरीर तो जड़ है, ये तो शरीर तो निकृष्ट है। ये भावना ज्ञानियों की होती है, वो शरीर को स्पेशली सुखा के रखते हैं क्योंकि वो सोचते हैं शरीर तो जड़ है, शरीर तो माया है, यूजलेस है। यस वो है, लेकिन क्योंकि ये भगवान की शक्ति से आया है इसलिए इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। आप वेद स्तुति पढ़ेंगे तो यही बात आ रही है कि क्या वेद भगवान का वर्णन कर सकते हैं? तो उसको उत्तर देते हैं, भगवान ने इन इंद्रियों की सृष्टि करी है। दोनों का रिलेशनशिप नहीं ना, काफी समय के बाद में समझ में आया कि संबंध क्या है। भगवान ने इन इंद्रियों की, हमारे इंद्रियों की सृष्टि करी है ताकि हम भोग करें और उनकी प्राप्ति भी करें। हम अगर भोग करना चाहें तो इंद्रियों से भोग कर सकते हैं और इंद्रियों में ये शक्ति भी दी है भगवान ने, क्योंकि उन्होंने सृजन किया है इंद्रियों का, कि इनका उपयोग करके मैं भगवत प्राप्ति भी कर सकता हूं। तो मैं खाली ये कह रहा हूं कि माया के द्वारा रचित जो पदार्थ हैं उनसे घृणा करने के बजाय उनका उपयोग व्यक्ति करना सीखे भगवान के श्रवण कीर्तन में मुख्य रूप से। तो यानी भक्त हर वस्तु का उपयोग भगवान के श्रवण कीर्तन में कर सकते हैं और उसके लिए वो उत्साहित होते हैं। देखिए एक बहुत सूक्ष्म विचार है, रजोगुणी व्यक्ति बहुत उत्साहित होता है, किस लिए? भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए और जगत में नाम कमाने के लिए, प्रतिष्ठा कमाने के लिए, यह मुख्य है, स्त्री धन पुत्र इत्यादि के लिए। तो भक्त भी उत्साहित लगते हैं और ऐसा लगता है तो बड़े रजोगुणी हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सेटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनका उद्देश्य है? कृष्णार्थम अखिल चेष्टा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? भले ही आपको लगे कि दोनों लोग इसी एक ही प्रकार से कार्य कर रहे हैं लेकिन दोनों का जो कह सकते जिस एनर्जी में वो काम कर रहे हैं बिल्कुल अलग है।
वो गुणों के अंदर है, हम लोग गुणों के अंदर
हैं। यस, जितनी मात्रा में हम कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं हम गुणों से अलग है। मेक सेंस? तो आपने क्या सीखा? बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। तो उसमें बुद्धि का उपयोग क्या कर रहे हैं आप? कृष्ण की सेवा में कर रहे हैं। और कैसे इस चीज का इस्तेमाल कृष्ण की सेवा में करेंगे? एक और पॉइंट है जो आप शायद मिस कर रहे हैं अभी, हर वस्तु भगवान की है। ये मेन बुद्धि का आपको पॉइंट पकड़ना, बुद्धि से दिमाग लगा सोचना है कि हर वस्तु भगवान का है, भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। मेक सेंस? और इस कारण से उसका उपयोग भगवान की सेवा में कर सकते हैं। और एक और बात है, गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें शुरुआत में इतनी बुद्धि होती नहीं है कि किस प्रकार से हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में करें, अपितु हमारी बुद्धि का तरीका क्या होता है, हर वस्तु का उपयोग मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति में करना चाहता हूं। होता है कि नहीं होता है? तो जब हम भक्ति करते हैं गुरु के मार्गदर्शन में तब धीरे धीरे बातें समझ में आती किस प्रकार से हर वस्तु भगवान की सेवा में नहीं जुटता। जैसे कि यहां पे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं कुणालनामा प्रभु, वो कह रहे थे कि वो ईंटे गिन रहे थे, सीमेंट के बैग गिन रहे थे मंदिर के लिए, और वो बाकी लोग हरे कृष्णा कर रहे थे, जब भी कर रहे थे तो उन्हें सोच रहे थे अरे सब लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं और मैं सीमेंट के बैग गिन रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी के पास आए, बोले प्रभुपाद जी मैं क्या कर रहा हूँ? कहते हैं यस दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस, ये शुद्ध भक्ति है। तो उनको उनको संबंध नहीं दिख रहा है, ऐसे प्रभुपाद जी जुहू मंदिर में थे तो वहां पे उस जुहू मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, खटखट 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 हो रहा था। तो प्रभुपाद जी ने बोला मैं इसमें भी हरिनाम संकीर्तन मुझे सुनाई पड़ता है। जो शुद्ध भक्त हैं उनको कुछ भी अनइंस्पायरिंग नहीं लगता, सुख दुख हानि लाभ कुछ भी है वो सब भगवान के संबंध में देख लेते हैं। तो इस प्रकार से उत्साह का आधार क्या है, हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखना और उसको उनकी सेवा में नियोजित करना। आप कोई बात समझ रहे हैं या आप लोग जतन महाप्रभु की तरह सुन रहे हैं जैसे सर्वाम सब लोग शांत हैं कुछ बोल ही नहीं रहे या बोलने का। देखिए निराशा होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक और बात यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपको जो कुछ भी दिया गया आपको सब भगवान की सेवा में नियोजित करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। मतलब गलत चीजों को छोड़ तो ऑब्वियसली छोड़ना ही है, लेकिन जो मान लीजिए किसी की गाने की प्रवृत्ति तो इसका मतलब नहीं इसको दबा दिया जाए, किसी की बोलने की प्रवृत्ति तो इसको दबा दी जाए, या जो भी आप कुछ कार्य करना चाहते हैं जो कि अधर्म ना हो तो भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में, अब नए भक्त लोग स्मार्टफोन यूज करेंगे तो आप जानते हैं कि फोन अधिक स्मार्ट होता है और भक्त कम स्मार्ट होते हैं, और फिर उससे वो लोग थोड़े और कम स्मार्ट बन जाते हैं। स्मार्ट मतलब होता है तेज चतुर, तो उसमें फिर फंस सकते हैं। तो कैसे इसका उपयोग करना है बहुत सावधानी से देखना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग क्या है, ये सब मेरी वस्तु है, इसका उपयोग मैं अपने भोग के लिए करूंगा, तो इसलिए बहुत आवश्यक है निर्देशन के लिए। भक्तगण उन सही सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सके। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। पूर्व भूमिका इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, अपने पास एक इंग्लिश की बुक रखनी चाहिए।
छोड़ दे
अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब तो आएगा। हाँ, अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। फोरग्राउंड प्रैक्टिकल एक्शन इन द फोरग्राउंड ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, कहने का अर्थ सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो अर्थ यह है कि आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अंदाज लगा ले कि उसको क्या करना चाहिए और उसके अनुसार वो कार्य करे, भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग है, निर्बंध कृष्ण संबंध है युक्तम वैराग्य उच्चते। निर्बंध का मतलब हट, हर वस्तु को भगवान के संग देखता है, हर व्यक्ति को हर व्यक्ति और वस्तु को भगवान के संबंध में देखता है, भगवान के लिए उपयोग में लग जाता है। ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं मैं क्या बोलने वाला, ऐसा नहीं कि आप सारा कुछ कर भी रहे हो, पूरा शक्ति लगा दी सुबह से शाम तक कृष्ण की सेवा करी, तो अब ऐसा भी नहीं कि अगले रात में आपको राधा श्याम सुंदर सपने में आए दहिया पी के सारा रा इस तरह से ऐसा नहीं होता है, लोग गाने गाते हैं इस तरह के, रात शाम सपने में आ गए और हमारा दही पी गए और उनसे पूछो अगर वाकई सपने में वाकई आकर दही पी जाएंगे तो फिर आप दोबारा बोलेंगे तो सपने में तो खूब पिलाना चाहते हैं व्यक्ति, तो इस प्रकार से लोग उसको बहुत चीपरी लेते हैं। कृष्ण भावना अनुशीलन करने में धीरे धीरे होता है। कृष्ण भावना मृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, शायद इसमें भी देंगे कि हाँ चलिए वो दे ही रहे प्रभुपाद, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। निसंदेह यह कृष्ण भावना मृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्य पूर्वक करते रहे अतएव धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे और अब वे उसमें उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए अपितु गुरु से उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्य पूर्वक पूरा करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात है, हमने इस बारे में टीका किया था थोड़ा सा, कि जब भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन के लिए उपदेश दिया था तो ये नहीं बोला था कि आज आप मंथन चालू करोगे और कल मक्खन निकल गया, मतलब कल अमृत निकल के आ जाएगा, और सबसे पहले तो जहर ही निकला था। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान की बात पर विश्वास करते हुए मंथन करते रहे, और जब नहीं निकल रहा था अमृत तो भगवान ने स्वयं मदद करी थी, सब जानते हैं इस बात को। तो यानी कि भक्त भक्ति करता रहे, कैसे प्रेम प्राप्त होगा वो भगवान पे छोड़ दे, कब होगा कैसे होगा वो भगवान पे छोड़ दे, भगवान अपनी तरफ से कृपा करेंगे तभी प्रेम प्राप्त होता है। तो जब वो हमारे सिंसियरिटी मतलब हमारे निष्कपट सेवा को देखेंगे तो अपने आप कृपा करेंगे, और मेहनत को भी। हम डिमांड नहीं कर सकते कि कल कृष्ण आप इस प्रकार से हमको कृष्ण प्रेम दे दीजिए, हो सकता है दे दें कल, लेकिन हम डिमांड नहीं कर सकते। प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन डिमांड नहीं कर सकते, हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो हम सेवा बंद कर रहे हैं। तो बंद कर दो ठीक है, अगली बार अगले जन्म में शुरू करना क्या है। तो ये नहीं चल सकता। हम लोग ये भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण प्रेम कितनी बड़ी चीज है एक्चुअली। मुक्ति मुक्ति क्या मोक्ष लघुताकृत भाव के स्तर पे भी मोक्ष भी लघु लगता है, तो कितना बड़ा उपलब्धि है जिसके सुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भगवान थोड़ा तो प्रतीक्षा करवाएंगे ना, देखेंगे कि भाई हम बाकी उसके योग्य हैं कि नहीं। भगवान कृष्ण को आकर्षण कर लेते हैं। कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। यह स्वाभाविक है कि एक नवविवाहिता कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। निसंदेह विवाह होते ही वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वस्त होना पड़ेगा कि निश्चित समय में संतान का जन्म होगा। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। भक्त सोचता है अवश्य रक्षिष्य बे कृष्णा, कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे। अभी ये बात बोल रहा था कि नहीं, मैं हम भगवान का भजन करें ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान प्रेम देंगे हमें, हमें प्रेम चाहिए, हम प्रेम के लिए साधन कर रहे हैं तो भगवान हमको सफल कराएंगे।
चेष्टा
हमारे और क्या, खाली थे ना बैठे हुए भाई, आपको जब मिल जाए तो बताना तब हम भी शुरू करेंगे। इस संबंध में हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कि एक भी व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिल गया, क्या आप देख रहे हैं कि मिल रहा है, उस मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, तो यानी मार्ग सही है, हम ठीक से कार्य नहीं कर रहे। मेरी बात आप समझ रहे हो?
उसके लिए सही
है, सबके लिए सही है, सबके लिए सही है, प्राय सभी लोग ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। जब हरिदास ठाकुर जी को कृष्ण प्रेम मिला, लक्का हीरा को प्रेम मिला भगवान के नाम से, और अन्य लोगों को मिला, तो हमको भी मिलेगा। और हम अभी भी भक्तों को देखते हैं जो भक्ति भक्ति में उन्नति कर रहे हैं, भागवत पढ़ के भगवान की सेवा करके भगवान का नाम जप करके उनको बहुत सुख मिल रहा है। तो जब उनको मिल रहा है तो हमको भी मिलेगा। अब कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है मतलब कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक तरीका है, विज्ञान मतलब थ्योरी है, उसके अनुसार कार्य कीजिए आपको वो रिजल्ट मिलेगा ही। नहीं मिल रहा है मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इस पे मैं कुछ एक छोटा सा बात नाम जप के संबंध में बोलना चाहता हूं। वाकई नाम जप का भाव क्या है? हे कृष्ण हमें सेवा में नहीं, ऐसा हो सकता? अब हम जब में सोते हैं तो हमें लगता है कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, ऐसा हो सकता है? मान लीजिए आपको वाकई किसी से डोनेशन चाहिए जन्माष्टमी का, सर आप थोड़ा सा 18,000 रुपए का देगा आपको डोनेशन? आज तक जिंदगी में कभी हुआ है कि डोनेशन कलेक्शन कर रहा कोई व्यक्ति और सो गया हो? थोड़ा सा पैसा मांगने के लिए व्यक्ति कितना आग्रह करता, कितना उत्साह होता है, धैर्य होता है, निश्चय होता है। और हम प्रेम चाहते हैं और हम लोग जब में सो जाते हैं, कोई बात नहीं चलता है, 2-3 बार ही सोया, ज्यादा नहीं। और कुछ तो ऐसा है जो सोने के बाद मैं तो नहीं सो रहा था, मैं तब कैसे व्यक्ति प्रगति करेगा? थोड़ा विचार करना चाहिए, इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सो रहा हूं क्या, थोड़ा तो सो रहा हूं क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। आप देख रहे हैं एटीट्यूड कितना अंतर हो जाता है। वाकई आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो क्या सकिए? ध्रुव महाराज सो रहे थे क्या जब करते समय? तो उत्साह होना चमायता। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपको शिक्षा लेनी चाहिए, हम सब लोग को लेना चाहिए, कपिल माँ का नाम देवाहूति माता और कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि से जब शादी होती है तो बहुत डिलक्स परिवार से आती हैं वो। डिलक्स मतलब बहुत धनी परिवार से, मनुपुत्री हैं वो, और जब वो सेवा करना चालू करती हैं, तो महाराज समझा रहे थे इसमें कि उनको पूरा विश्वास था कि उनके पति बहुत समर्थ व्यक्ति हैं, लेकिन उनके पति बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे उनके ऊपर, पूछ भी नहीं रहे थे, कह रहे भाई साड़ी कैसी है, धुली की नहीं, वॉशिंग मशीन लाओ क्या, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं दिया, घर बरबार, सब एकदम बहुत ही गरीबी में रही। और कितने साल के लिए रही आनंद कृष्ण को, कितने साल तक, बहुत दिन तक। अब बताओ इतने दिन तक कोई पति पूछे नहीं,
बाल जाता बन
गए, यस, खाने पीने के लिए पूछे नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हो, तो व्यक्ति की श्रद्धा हो जाएगी कि पागल तो नहीं है, तो पूछता नहीं, चलो मैं कहीं और चली जाती हूँ, आजकल तो पहले यही होगा, चलो कहीं और चली जाती, किसी और को स्वीकार कर लेती हूँ। लेकिन उनको विश्वास था कि ये भक्ति में बहुत बड़े हुए हैं, विधाता से भी श्रेष्ठ है, ये उसमें बताया हुआ है कि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है, और उनको पूरा विश्वास था और सेवा करती गई। तो फिर देखिए कृपा जब होती तो इतनी बड़ी उन पर कृपा हुई कि भगवान उनके पुत्र बने। यही चीज हम देखते हैं शबरी के केस में, उनके गुरु जी ने बोला कि आप रोज आश्रम को सजाओ, किसी भी दिन भगवान राम आ सकते हैं, और कई इसी बात के कारण वो जिंदा रही, और उनके जो साथ वाले लोग थे वो सब मर गए, वो जिंदा इसीलिए रखी थी कि तो आज श्री राम आएंगे, आज श्री राम आएंगे, और रोज आश्रम को ऐसे सजाती थी कि आज ही राम आएंगे। तो आप देख सकते हैं शबरी में उत्साह था, धैर्य था, निश्चय भी था, और विश्वास था गुरु की बात पे, और एक दिन भगवान श्री राम आए। ये एक बात सत्य है कि जिस भक्त ने, शुद्ध भक्त ने कोई बात बोली है तो भगवान रखते जरूर हैं। जैसे कि महाराज नृग, आपको पता हो महाराज नृग को भी एक भक्त ने आशीर्वाद दिया था, क्योंकि वो आए उनके घर राज्य में, और उन्होंने कहा मैं भगवान गोविंद का मंदिर बनाना चाहता हूं, और भगवद गीता और श्रीमद भागवतम को वहां पर रखना चाहता हूं ताकि लोग पढ़ सकें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं, तो उन्होंने ऐसा किया तो बहुत खुश हुआ, उसने बोला एक दिन आपको कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। तो उसको हुआ, मुच्छकुंद महाराज को भक्त गर्गाचार्य ने बोला था कि आपको होगा, उसको हुआ। तो हम ये देख रहे हैं कि गुरु की बात पे, गुरु मुख पद्म वाक्य, विश्वास होना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि शिष्य का ये भाव होना चाहिए, मैं मुक्त होऊंगा या नहीं होगा ये मेरा कंसर्न नहीं है, ये मतलब ही नहीं मेरा, गुरु की आज्ञा है, प्रमाणिक गुरु है, इनकी बात पे चलना बस मेरा कर्तव्य है। तो अगर आदमी सोचे 16 माला से कैसे पहुंचूंगा, नहीं पहुंचूंगा, ये वो सोचना नहीं है, ठीक से करना है, अच्छे से करना है, ये हमारा कर्तव्य है। बाकी वो आगे गुरु और कृष्ण देखें, वो भी देख ही रहे ना, कि वो तो हर समय देख ही रहे कि हम क्या कर रहे हैं। तो एक और बात, तीसरी बात क्या है, अवश्य रक्षवे कृष्ण का मतलब ये नहीं कि हम ट्रक के सामने खड़े हो जाएं, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं डिवोटीज आर फियरलेस बट नॉट फुलिश, फियरलेस का मतलब निर्भय होते हैं लेकिन मूर्ख नहीं होते। तो कृष्ण रक्षा करेंगे, इसका अर्थ ही नहीं कि अपना सर आप ट्रक के नीचे दे दीजिए, देखिए आप देखते हैं कृष्ण रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इसका मतलब है कि मूर्खता करे व्यक्ति, लेकिन ये विश्वास होता है अपना कर्तव्य करे, लेकिन ये विश्वास होता है कि अंततोगत्वा भगवान रक्षा कर रहे हैं और भगवान ही रक्षा करेंगे। अपनी बुद्धि को लॉकर में रख करके नहीं जा सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं माता देवी की को जब कंस मारने के लिए उद्यत हुआ था, तो उन्होंने भी अपनी बुद्धि के द्वारा प्रयास किया कैसे इस विपदा को भी टाला जाए, ये नहीं आप चलो कृष्ण पे आश्रित हो गया, चलो मरने तो देखियो क्या देखा जाए, इट्स नॉट लाइक दैट। ये शरण लेने का अर्थ नहीं है कि हम अपनी बुद्धि को बिल्कुल छोड़ दें, कि हम अपनी बुद्धि, हाँ ये जानना चाहिए कि अपनी बुद्धि से हम रक्षा कर नहीं सकते, जितना हमारा आवश्यक है प्रयास करें, लेकिन अंततोगत्वा कृष्ण पे आश्रित होना चाहिए। हमारे महाराज का लेक्चर हम सुन रहे थे, महाराज भी यही बात बोल रहे थे कि हम लोग को अपनी शक्ति से प्रयास करना चाहिए, लेकिन विश्वास भगवान पे होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी शक्ति से सारा कुछ कर लेंगे, अपनी शक्ति से अपनी रक्षा भी कर पाएंगे, वो नहीं होता। ठीक है, अभी हम तत्त्व कर्म प्रवर्तनात् को अगले दिन देखेंगे, 8:30 हो चुका है तो यहां रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।